आचार्य स्टोत्र सत्य शिवाय सदस्य भक्ति वेदांत। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय,
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय,
श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय,
श्री श्री गौर निताय की जय, श्री उपदेशामृत की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथाधिकं सहस्रजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृतात्महं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। जो जो भक्तों को उपदेशा पुस्तक चाहिए हिंदी आएंगे कृपया तो अपना नाम बताइए हम आपको दे देंगे। किसको चाहिए? पहले इंग्लिश जो चाहिए नाम बताओ।
एक किताब पे अपने पास में रखिए, मैं आपकी व्यक्तिगत किताब है, अपना नाम लिख लीजिए और इसको हर बार जब क्लास होगा तो इसमें लेकर आइए। हर बार एक नई किताब लिख लीजिए और अपने आश्रम में भी इसको सुरक्षित अच्छी तरह से रखिए और जैसे है वैसे मत रखिए, जैसे है वैसे हो पढ़िए, ठीक है? दरवाजा खोलिए, कोई आना चाहते हैं शायद। ठीक है, तो कोई आना चाहे तो आ सकते हैं, खुला रहने दीजिए, ऐसे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। जो लेट आएंगे भक्त उनको बैठने के लिए जगह मिल जाए, थोड़ा सामने आइएगा। हरे कृष्णा। तो आप सब जानते हैं कि हमारे आंदोलन में शास्त्रों का महत्व क्या है। शास्त्र तो अनेक हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के अनुसार वृंदावन के षट गोस्वामियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें कि उन्होंने वैष्णव सिद्धांतों का विस्तार में स्पष्टीकरण किया, और उनके बाद में आने वाले वैष्णवाचार्यों ने इस दर्शन को और भी विस्तारित रूप में ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया। आधुनिक काल में श्री प्रभुपाद जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जो कि महाप्रभु के और शरद गोस्वामियों के शिक्षाओं के ऊपर आधारित हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ हमारी संस्था के अंदर भक्तों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सब श्री प्रभुपाद जी के ग्रंथों को नियमित रूप से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। प्रभुपाद जी ने पुस्तक वितरण के ऊपर बहुत जोर दिया था, जैसा कि हम सब जानते हैं, परंतु साथ साथ श्री प्रभुपाद जी ने उनके लिखे हुए पुस्तकों को अध्ययन करने के लिए भी उतना ही महत्व दिया था। कभी कभी वो कहा करते थे कि आप पुस्तक वितरण करने जाते हो और जिसको आप किताब दे रहे हो, यदि वो पूछ रहे कि इस किताब में क्या है और आप कहो कि मुझे नहीं पता, मैं केवल वितरण कर रहा हूं, तो फिर वो व्यक्ति कैसे आपकी बात को मानेगा। सबसे पहले तो हम सबको इन सिद्धांतों को, इस दर्शन को, इन कथाओं को अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए, और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा, निष्ठा, ज्ञान इन शास्त्रों के प्रति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता जाएगा, जो कि वैसे भी हो रहा है हमारे मुख्य साधन हरि नाम के द्वारा और अन्य सेवाओं के द्वारा। तो ऐसे जब हम इन ग्रंथों को ठीक ठाक पढ़ेंगे, हमें इनमें रस भी आएगा और ये इच्छा उत्पन्न होगी कि हम इन ग्रंथों को नियमित रूप से रोज पढ़ें। जैसे कि एक शराबी को एक बार शराब की आदत पड़ जाती है, तो यदि थोड़े समय के लिए वो शराब नहीं पीता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो तो एक विकृत रूप है। हमें भी कृष्ण के प्रति इस प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए कि कृष्ण के बारे में यदि हम नहीं सुने, कृष्ण की सेवा नहीं करें, कृष्ण के भक्तों का संग नहीं करें, कृष्ण के संदेशों को हम नहीं पढ़ें, तो हमें वो एक प्रकार की भावना होनी चाहिए, वो आतुरता होनी चाहिए कि कब हम ये सब चीजें कर पाएंगे। यहां हमारे संस्था में सेवा के ऊपर बहुत महत्व है। कोई मंदिर का मार्जन करते हैं, कोई व्यवस्थापन में व्यस्त रहते हैं, कोई प्रसाद वितरण में, कोई प्रसाद बनाने में, तरह 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 की सेवाएं, अनेक सेवाएं हैं। कोई भगवान की पूजा अर्चा सेवा करते हैं, तो अनेक सेवाएं हैं। और इन सबको करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी भावना अच्छी रहे, जैसे कि आगे चल के हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी भावना ठीक बनाए रखने के लिए हरि नाम सबसे महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण, कीर्तन, चिंतन, मनन, विचार विमर्श, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में इन ग्रंथों को, जो कि श्री प्रभुपाद जी ने केवल हम सबके लिए लिखा है, उन पर नियमित रूप से अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक है। हम सबके लिए ये एक दैनिक विधि होनी चाहिए कि हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना ही चाहिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथ ये रत्नों का भंडार है, और भले हम कितने भी साल इस आंदोलन में क्यों न हुए हो, भले हम 25 साल से हुए हो इस संस्था में, या भले हम अभी 6 महीने पहले ही इस संस्था से जुड़े हुए हो, परंतु इन किताबों को पढ़ने में हमारी रुचि कम नहीं होगी। 25 साल के बाद में हमें यह नहीं लगेगा कि इन ग्रंथों को पढ़ के क्या लाभ मिलने वाला है, अभी क्या पढ़ेंगे, नहीं, और भी रुचि बढ़ती है। प्रभुपाद के ग्रंथ एक विशाल समुद्र के समान है, जिसका कोई अंत नहीं है। छोटे छोटे ग्रंथों की संख्या तो बहुत है, फिर भगवद गीता है, फिर श्रीमद् भागवत है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु जैसे ग्रंथ भी हैं, और उसके बाद चैतन्य चरितामृत है। तो एक के बाद एक इन सारे ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे, तो जब तक एक बार हमारा पढ़ने इन सारे ग्रंथों को हो जाएगा, तो इतना लंबा समय लग जाएगा कि पुनः शुरुआत करने का समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सारा जीवन निकल सकता है। और जब प्रभुपाद जी श्रवण की बात करते हैं, तो केवल सुनने में और श्रवण करने में वो भेद करते हैं। सुनने के लिए तो बहुत से लोग सुन लेते हैं, परंतु श्रवण करना, ये अंतर होता है कि व्यक्ति अपने हृदय से श्रवण करता है, भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक श्रवण करता है। और अध्ययन भी एक प्रकार का श्रवण है। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी बोल रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से, और जब हम हमारे आंखों से इन शब्दों को ग्रहण करते हैं, या किसी क्लास में बैठकर इन शब्दों को ग्रहण करते हैं, तो हम श्रवण ही कर रहे हैं। तो अध्ययन भी श्रवण ही है, तो अध्ययन भी हमें उसी भाव से करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहा करते थे, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी माई बुक्स, कि हमें बहुत ध्यान से विस्तार में जाके, गहराई में जाके उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए। हाँ, ऊपर ऊपर से एक बार ऐसे पढ़ लेना ये भी ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो हैं वो अमृत के समान हैं। एक साधारण दृष्टांत यदि दिया जाए, तो एक बात मीठा गुलाब जामुन और रसगुल्ला आप हाथ में लें, तो किसी भी दिशा से आप रसगुल्ला को या गुलाब जामुन को खाएं, वो मीठा ही लगेगा। ऊपर से खाएं, नीचे से खाएं, बाएं ओर से, तो ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के ग्रंथ भी कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए, आपको मीठे ही लगेंगे। और पहले ब्रह्मचारी आश्रमों में ये एक नियम हुआ करता था कि शाम को जब दूध पीने का समय होता था, तो सारे ब्रह्मचारी अपने आश्रम में एकत्र होते थे, और एक को भक्त कृष्ण बुक पढ़ते थे, और सारे भक्त सुनते थे। उस समय कोई प्रजेक्ट नहीं होता था, कुछ नहीं, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो रात को सोने के पहले कृष्ण कथा सुनकर अपना चित्त को शुद्ध करके वापस जाते सोते थे, तो रात में भी कोई बुरे सपने नहीं आते थे, कोई भौतिक बातें मन में नहीं आती थी। सपने आते तो कृष्ण के सपने आते, कैसे कृष्ण ने केशी का दमन किया और तरह तरह के भगवान की लीलाएं जो हम सुनकर सो जाते हैं। उसी प्रकार से पहले जब शुरुआत के दिन थे हमारे संस्था के और अनेक भक्त मंदिर में प्रवेश कर रहे थे हर दिन, तो वहां पर सुबह और शाम के क्लास तो होते ही थे, साथ साथ बीच में भी क्लास हुआ करते थे, बाकी समय हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते थे भक्त लोग सड़कों पे, और ऐसे ही मंदिर चलता था। सभा भी भरपूर होती थी, लक्ष्मी भी पर्याप्त मात्रा में अंदर आती थी, क्योंकि लोग संकीर्तन कर रहे थे, लोग कृष्ण कथा का श्रवण अध्ययन आदि कर रहे थे, आपस में भक्त लोग प्रज्वलित नहीं करते, केवल प्रभुपाद जी की वाणी को दोहराते, आज प्रभुपाद जी ने क्लास में ऐसे कहा था, इस ग्रंथ में हमने ऐसे पढ़ा है, तो इस प्रकार का एक बहुत ही दिव्य वातावरण हुआ करता था। तो उन पुराने दिनों को हमें पुनः लाना है, जब भक्तों के जीवन में विशेष करके ब्रह्मचारियों के जीवन में कृष्ण कथा ये केंद्र बिंदु बन जाएगी, और हम आपस में मिलकर कोई प्रजल कभी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भले बुराई नहीं करेंगे, हम चाहे हमारे सेवा की बातें करें या जो आवश्यक है उन चीजों के बारे में यहां बात करें, या तो कृष्ण कथा की बातें करें जो हम ग्रंथों में पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे कि उनके भक्त जो हैं वो इतनी बड़ी मात्रा में पुस्तकों का वितरण कर रहे थे, परंतु एक बार उन्होंने कहा कि भक्तों के प्रति शिकायत एक ही है कि वो मेरे ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ते नहीं है, वितरण तो कर रहे हैं खूब लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को हमें प्रसन्न करना है तो केवल पुस्तक वितरण करने मात्र से नहीं होगा, पुस्तक वितरण करते करते और अन्य सेवाओं को करते करते उन ग्रंथों को पढ़ना भी चाहिए। अंततः पुस्तक वितरण करने का उद्देश्य क्या है? लोगों को भक्त बनाना। तो प्रभुपाद जी ने कई बार कहा है और आगे चल के उपदेश आमृत के आमुख में भी हम सुनने वाले हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने उन लोगों के लिए भी ये ग्रंथ लिखे हैं जो कि हताश हैं बाहर के जीवन में, फ्रस्ट्रेटेड, जो निराश हैं, डिसअपॉइंटेड, परंतु खास करके मेरे ग्रंथों को मैंने लिखा है हमारे भक्तों के लिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहें तो उनके ग्रंथों को नियमित रूप से पढ़ें। तो ऊपर ऊपर से पढ़ना ये भी अच्छी बात है, इन ग्रंथों को मिठास अवश्य हमें प्राप्त होगा, परंतु इन ग्रंथों को बहुत गहराई में जाकर पढ़ना, इनको समझना, जैसे एक विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ता है उस प्रकार से अध्ययन करना भी आवश्यक है। इससे हमारी समझ गहरी हो जाएगी और इसमें बहुत रस मिलेगा, और जिस विषय का अध्ययन हम करते आए हैं वो सदा हमारे मन में घूमता रहेगा, तो माया के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा हमारे मन में प्रवेश करने के लिए। तो श्री प्रभुपाद जी ने कई ऐसे बार कहा है कि हमारे जो मंदिर हैं वो केवल मंदिर नहीं है, वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हैं, जहां पर लोग आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। श्री उपदेश अमृत ये प्रभुपाद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी विरचित, जिसके ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने टीका लिखी है। रूप गोस्वामी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिसका उल्लेख हम आगे चल के करेंगे। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि उपदेश अमृत श्री ईशोपनिषद, भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु, ये हमारे चार प्राथमिक ग्रंथ हैं जो कि सभी भक्तों को पहले पढ़ने चाहिए। और साथ साथ सुबह का भागवत क्लास होता है, हम भागवत भी पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकते हैं, अन्य प्रभुपाद जी के ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। परंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो हमें इस संस्था में बहुत साल हो गए और ये तो प्राथमिक ग्रंथ है, प्रभुपाद जी ने कहा है तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे अभी हम चर्चा करेंगे, उपदेश अमृत में जो चर्चा हुई है वो भक्ति के प्राथमिक स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर के विषयों को के बारे में चर्चा करती है। इसलिए हम सब के लिए, चाहे हम जितने भी सालों से संसार से जुड़े हुए क्यों न हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें केवल 11 श्लोक हैं, परंतु एक से एक श्लोक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आप में से किसी को थोड़ा बहुत कसरत करते रहना होगा, हर बार एक थोड़ा एक चार्ट आपको घुमाने का कष्ट करना होगा, ठीक है, चार्ट घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे, एक सूची देना चाहते हैं, हम ओवरव्यू ऑफ उपदेशामृत। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या तो अलग से हम यहाँ इन चार्ट्स को छोड़ के जा सकते हैं और बाद में भी आप लिख सकते हैं। समय बचाने के लिए हो सकता है आप केवल अभी ध्यान से देखें, समझें और बाद में आप इनको लिखें, क्योंकि एक साथ लिखना भी और सुनना भी तो दोनों चीजें एक साथ में मुश्किल हो जाता है। आप तो जानते हैं कि हम जिस पथ पर चल रहे हैं और जो हमें इस संस्था में सिखलाया गया है वो है उत्तमा भक्ति का पथ। भक्ति सामृत सिंधु में उत्तमा भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी ने दी है और वो श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। आप में से हो सकता है सभी भक्तों को इस श्लोक कंठस्थ हो, तो कितने भक्तों को कंठस्थ है हाथ ऊपर कीजिए। अन्याभिलाषिता शून्यम श्लोक, और ज्यादा हाथ ऊपर उठने चाहिए थे, ठीक है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो इस श्लोक में जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में है, इसमें श्री रूप गोस्वामी परिभाषा दे रहे हैं भक्ति का, उत्तमा भक्ति का। ये श्लोक सारे भक्ति रसामृत सिंधु का परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र अर्थात जिस श्लोक पर सारा ग्रंथ आधारित है, जिस श्लोक के माध्यम से या जिस श्लोक के आधार पर हम सारे ग्रंथ को समझ सकते हैं, जिस सूत्र या श्लोक के द्वारा सारे ग्रंथ की परिभाषा होती है वो है परिभाषा सूत्र। तो हम सबका जीवन इस उत्तम भक्ति के पथ में चल रहा है। तो उत्तम भक्ति क्या है? उत्तम भक्ति अर्थात वो सेवा जो हम अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, अपने अभिलाषाओं को मन में न रखते हुए और जिस सेवा में, जिस प्रेम में कोई कर्म कांडी या सकाम कर्म भावना मिश्रित न हो, या जिसमें कोई दार्शनिक चिंतन द्वारा उत्पन्न निराकार में लीन होने की भावना न हो, या जिसमें अति तपस्या, अति वैराग्य, सांख्य आदि योग पद्धति आदि इनका मिश्रण न हो, तो ऐसे भक्ति को जो कि निरंतर किया जाए जाता है उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। और ये हमारे इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं। भक्ति एक क्रियाशील पद्धति है, भक्ति इज एन एक्टिव प्रोसेस। अनुशीलनम शब्द का तात्पर्य यह होता है कि हमारे इंद्रियों को, हमारे मन बुद्धि वाचा इन तीनों को हम भगवान की सेवा में हमेशा लगाते हैं तो ये उत्तमा भक्ति है। और उत्तमा भक्ति का वर्गीकरण भी भक्ति सांगत सिंधु में रूप गोस्वामी करते हैं। वो कहते हैं कि दो प्रकार की भक्तियां हैं उत्तमा भक्ति, एक है साधन भक्ति और दूसरा है साध्य भक्ति। साधन और साध्य इन दो शब्दों को आप जानते हैं, आप से जिन भक्तों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हम कहें कि साधन का अर्थात है अभ्यास, प्रैक्टिस। साधन मीन्स द मीन्स द प्रोसेस, प्रैक्टिस। और साध्य मतलब हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य। सो साध्य मीन्स आवर गोल, आवर ऑब्जेक्टिव और द एंड। सो देयर इज अ मीन्स एंड द एंड। वी डू सर्टन थिंग्स बाय सर्टन वे टू अचीव सम एंड, सम गोल, सम ऑब्जेक्टिव। हम कोई कार्य करते हैं किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। दूसरी तरह से देखा जाए तो साध्य ये परिपूर्णता की अवस्था है। साध्य इज अ स्टेज ऑफ परफेक्शन एंड साधन इज अ स्टेट ऑफ प्रैक्टिस। तो साधन जो है ये अभ्यास का स्तर है जिसमें कि हम परिपूर्णता को प्राप्त नहीं कर चुके होते हैं। हमारा उद्देश्य है उस परिपूर्णता को प्राप्त करना, परंतु अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने सुना होगा कि अभ्यास करने से परिपूर्णता की प्राप्ति होती है किसी भी चीज में। आप में से जो गाड़ी चलाना जानते हैं, आप जानते हैं पहले गाड़ी चलाते समय आदमी को इतना साहस नहीं होता, इतना अभ्यास नहीं होता, तो बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे चलाता है, हिट खिंचा के। परंतु जैसे वो निपुण हो जाता है उसमें तो बिना सोचे से आराम से वो चला लेता है। कोई टाइपराइटर सीख रहा होता है तो पहले टाइपिंग करते समय तो बहुत धीरे धीरे टाइपिंग करता है, एक एक उंगली के साथ। लेकिन जैसे वो अभ्यास करके प्रवीण हो जाता है उस चीज में तो फिर बहुत जल्दी उसकी उंगलियां हिलती हैं टाइपराइटर के ऊपर। और कई लोग ऐसे हैं जो तो इतने प्रवीण हो जाते हैं इसमें कि नीचे नोट देख कर भी केवल उनकी उंगलियां हिलती रहती हैं और वो टाइप करते जाते हैं और बिल्कुल गलती भी नहीं होती कोई। ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे टाइपिस्ट होते हैं। हमारे बग भी जो थोड़े बहुत हैं जो कंप्यूटर ज्यादा अच्छा चला लेते हैं, बहुत अच्छा टाइपिंग, फास्ट करते हैं जल्दी से। कई बग पैसे लेके देखते भी नहीं है, किसी से बात भी कर टाइप कर रहे हैं तो अभ्यास कर करके उनको देखना भी नहीं पड़ रहा है। उनके लिए नेचुरल हो गया, स्वाभाविक हो गया है। लेकिन जब नेचुरल नहीं होता, जब तक कि वो स्वाभाविक अवस्था जागृत नहीं होती, तब तक कट 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 धीरे 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 करना पड़ता। कभी गलती होती है फिर गलती को सुधारना पड़ता है। लेकिन जब अभ्यास कर करके मेहनत करके समय के बाद व्यक्ति परिपूर्णता को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति में भी जब हम शुरुआत में भक्ति के पथ में आते हैं तो वो स्वाभाविक रुचि हमारे मन में होती नहीं है, वो आसक्ति भगवान के प्रति नहीं होती है, वो तेज शुद्ध प्रेम नहीं होती है। हमारे मन में तरह तरह की भौतिक आसक्तियां होती हैं, भौतिक वासनाएं कामनाएं होती हैं, तरह तरह के भ्रांतियां होती हैं। इस वैष्णव सिद्धांत को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हम नहीं जानते हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस कारण से हमारी भक्ति जो है वो थोड़ी कोमल या कमजोर होती है। परंतु जैसे जैसे हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत, जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहां स्थापित किया है हमारे संस्था में, उन्होंने हमें एक ऐसा स्थान दिया है जहां पर हम सारे चीजों को अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, अपने जीवन में उतारें, तो धीरे धीरे से हम साध्य अवस्था की ओर बढ़ते हैं। ग्रेजुअली बाय प्रैक्टिसिंग अंडर द प्रॉपर गाइडेंस इन द सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, कृष्णा कॉन्शियसनेस सोसाइटी इज कॉल्ड, then we will gradually move towards the state of perfection, sadhya bhakti, perfect bhakti, where bhakti is now very natural. जहाँ पर भक्ति की अवस्था एक स्वाभाविक सहज अवस्था हो जाती है व्यक्ति के लिए, तब उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता, कठिनाई नहीं होती है भगवान का स्मरण करने के लिए, स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा में रत रहता है भक्त। तो साध्य भक्ति में भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति है। वास्तव में प्रेमा भक्ति ही साध्य भक्ति है। भाव भक्ति प्रेमा भक्ति का एक अंकुर मात्र है। जो अंकुर अभी खिलने वाला है और खिलने के बाद वो पूरी तरह से फूल के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भाव भक्ति पूरी तरह से साध्य अवस्था नहीं है। सो इन वन सेंस इफ यू सी भाव भक्ति दैट इज हियर क्लासिफाइड अंडर साध्य भक्ति, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज नॉट साध्य, because it is just one stage prior to prema bhakti, which is the highest stage of devotion. फिर भी भाव भक्ति को हम साधन भक्ति में भी नहीं ले सकते, क्योंकि भाव भक्ति वो अभ्यास की अवस्था नहीं है। On the other hand, भाव भक्ति cannot be classified as साधन भक्ति, because it is not a stage of practice. It is a state of reaching a certain level of perfection. भाव भक्ति में व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वो साक्षात भगवान का दर्शन आमने सामने करे, उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकारों का प्रकट होता है, इतना ऊंची अवस्था में होते हैं वो, सो एग्जाल्टेड, सो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू प्रेमा भक्ति, बट नॉट फुली क्विट येट रीच द स्टेज ऑफ प्रेमा भक्ति। तो प्रेम भक्ति की अवस्था तो बहुत निकट है ये भाव भक्ति की अवस्था, परंतु पूरी तरह से प्रेम भक्ति नहीं कहलाती है। दूसरी ओर जो साधन भक्ति है, जो हमारे लिए साधन है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ मीन्स, उसके दो भाग हैं, एक है वैधि भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो आप में से जो भक्त रसामृत सिंधु पढ़ चुके हैं, आप जानेंगे कि ये शब्दों के, इन शब्दों के अर्थ क्या है। तो साधन भक्ति वो है जो कि हमारे इंद्रियों के द्वारा की जाती है। जब हम भगवान की सेवा हमारे इंद्रियों के द्वारा करते हैं, प्रमाण गुरु परंपरा के निर्देशन के अनुसार, और जिस सेवा से अंततः हमें भाव भक्ति का फल मिल जाता है, वह है साधन भक्ति। इन सब चीजों को गहराई इस समय समझने की याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय हम उपदेश अमृत की चर्चा कर रहे हैं। फिर भी इन बातों को थोड़ा बहुत मन में जान लेना यह भी आवश्यक है। और साधन भक्ति का जो पहला भाग है वैधि भक्ति, उस अवस्था में व्यक्ति विधियों के अनुसार अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। विधियों को, आदेशों को नकारने का प्रश्न नहीं होता, प्रभुपाद जी कहते हैं। इन वैधि भक्ति देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजल। गुरु का आदेश है कि सुनाना जब करना चाहिए तो करना चाहिए, इसमें कोई बात करने की बात नहीं है, मैं क्यों करूं नहीं। उत्तम भक्ति करना है, साधन भक्ति करनी है, तो गुरु के आदेश का पालन करना ही चाहिए, चार नियमों का पालन करना ही चाहिए, इसमें कोई बहस की बात नहीं है कि क्यों करें, करना चाहिए। तो वैधि भक्ति जो व्यक्ति करता है, उसकी जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है या जो प्रेरणा है, नियम पालन करने की जो प्रेरणा है, वो गुरु और शास्त्रों के आदेशों के ऊपर आधारित है। ऐसा जो वैधि भक्ति करने वाला भक्त होता है, उसको श्रद्धा होती है, हाँ प्रभुपाद जी ने जो कहा है वो सही है, जो शास्त्र में कहा गया है श्री कृष्ण द्वारा वो सही है, और इन वचनों में मुझे श्रद्धा है और मुझे इनको करना चाहिए, चाहे जो भी कुछ क्यों ना हो। तो श्रद्धा से व्यक्ति प्रेरित होता है भगवान की सेवा करने के लिए। हालांकि इस समय उसके अंदर स्वाभाविक रूप से सहज रूप से रुचि जागृत नहीं हुई होती है। इन द स्टेज ऑफ वैदिक भक्ति अ पर्सन इंस्पिरेशन और रीजन फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द स्क्रिप्चर इज फेथ इन द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड फेथ इन द ऑर्डर ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड द स्पिरिचुअल मास्टर्स। At this stage, there is no question of refusal. And in Vaidhi Bhakti, there is not yet a natural taste, ruchi, that has developed for Krishna and for Krishna Bhakti. We are doing it out of obedience. Agyakari hokar hum kar rahe hain. Toh Vaidhi Bhakti ki avastha mein agyakari hona, ye bahut avashyak hai. शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। परंतु ऐसे अभ्यास करते करते धीरे धीरे से एक दिन आएगा जब व्यक्ति के हृदय में स्वाभाविक रुचि आ जाएगी भगवान की सेवा के प्रति, नाम के प्रति, और उस समय वो भगवान की सेवा केवल इसलिए नहीं कहेगा कि मुझे बताया गया है, मैं नहीं आऊंगा तो मुझे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं आए, क्यों नहीं सेवा की। नहीं, उस समय व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि जागृत हो गई होती है और सहज रूप से वो भगवान की सेवा करता है, उसको स्वाद उत्पन्न हो गया होता है। इन द स्टेज ऑफ राघवयोग भक्ति द डिवोटी हैज डेवलप नेचुरल टेस्ट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नाउ ही डजंट हैव टू बी टोल्ड टू डू एनीथिंग, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली ही विल डू, because that natural attraction has come to him. He doesn't have to think, oh, my spiritual master will chastise me. Mere guru mere ko daantenge, main nahi karunga to, nahi main aise aise kaha hai, dar ke mare nahi, aise karunga to paap ho jayega, dand milega nahi. Swabhavik prem se vyakti karta hai. To jab seva karne ki prerna ruchi se जागृत होती है तो उसे रागानुगा अवस्था कहते हैं, रागानुगा भक्ति। ठीक है, और फिर आगे भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो हमारा लक्ष्य है प्रेमा भक्ति की इस अवस्था को प्राप्त करना। सो आवर गोल ऑफ लाइफ इज टू रीच द पॉइंट ऑफ प्रेमा भक्ति। बट इवन इन प्रेमा भक्ति देयर आर मेनी स्टेजेस ऑफ परफेक्शन। हम आगे बढ़ते बढ़ते इसकी कोई सीमा नहीं है। यह भक्ति है, ये कृष्ण प्रेम है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के बाद हम सोचेंगे अभी हम सो जा सकते हैं, चलो अभी ध्येय प्राप्त कर लिया तो अभी कोई सेवा नहीं है। नहीं, व्यक्ति विवश होकर 24 घंटे भगवान की सेवा करेगा तीव्र प्रेम से, उसका हृदय पूरी तरह से पकड़ जाता है भगवत प्रेम में। भगवान को चाहे भी तो भूल नहीं सकता है। ये प्रेम भक्ति की अवस्था है और इस अवस्था की भी वृद्धि होती रहती है और इस वृद्धि का अंत नहीं है। ये है आध्यात्मिक जगत। तो हमारा ये ध्येय है जीवन का, प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। तो हमने इन विषयों की चर्चा क्यों की, जबकि भक्ति की चर्चा तो भक्ति रसामृत सिंधु में की है रूप गोस्वामी ने। तो उपदेशामृत में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उत्तम भक्ति बताया कि चर्चा हमने क्यों की, क्योंकि हमारे आचार्यों ने बतलाया है कि इन उपदेशामृत के 11 श्लोकों में उत्तम भक्ति के इन अलग अलग वर्गों की चर्चा हुई है। जैसे यहाँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि उपदेश अमृत के पहले 7 श्लोकों में वैधि भक्ति की चर्चा हुई है, 8वें श्लोक में राधा उगा भक्ति की चर्चा हुई है, और अंतिम 3 श्लोक 9वें 10वें और 11वें श्लोक में भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की चर्चा हुई है। तो सारे उपदेश अमृत में जिनमें कि केवल 11 श्लोक हैं, हैं श्री रूप गोस्वामी ने वैदिक भक्ति से लेकर प्रेमा भक्ति की अवस्था की चर्चा की है। देखिए सारा रेंज कवर किया इन्होंने। सो द क्वेश्चन व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ उपदेश अमृत व्हाई आर वी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट आर डिस्कस्ड इन भक्ति रसामृत सिंधु। द आइडिया इज दैट देयर इज अ कनेक्शन दैट इन दीज 11 वर्सेस ऑफ उपदेश अमृत Shri Rupa Goswami has described the various stages of Uttama Bhakti. In the first 7 verses, Vaidhi Bhakti is discussed, 8th verse, Raghavoga Bhakti is discussed, and the last 3 verses, that is 9, 10 and 11, the Bhava Bhakti and Prema Bhakti states of life, of consciousness, are discussed. So therefore you can see that Upadeshamrita, even though it is a small book with only 11 verses, but it covers the entire range of Krishna consciousness, from the beginning to the highest perfection. इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उपदेशामृत केवल नौ सुखिया भक्तों के लिए है जो अभी अभी आश्रम में आए हैं। नहीं, ये सब के लिए है, सारे भक्तों के लिए है। रूप गोस्वामी इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने ऐसे छोटे से ग्रंथ में ये सारी चीजें डाल दी हैं। सो ब्रिलियंट जॉयस रूप गोस्वामी, ही हैज कवर्ड द होल रेंज इन सम वेरी मीनिंगफुल वर्सेस। ठीक है, इस चार्ट को घुमाएंगे। सो नाउ एक्चुअली क्या करना चाहिए कि ये तीन चार्ट है ना, ये आप यहां पर लिख दीजिए, 1, 2, 3 ऐसे इनको पेस्ट कर दीजिए। टेप है यहां पर, टेप है ऊपर लगाने के लिए। हाँ, इसको फाड़ दीजिए। नहीं, उसके बाद वाला ये फाड़ दीजिए। अब ओवरव्यू ऑफ उपदेशामृत, वी आर गोइंग टू सी फर्दर ओवरव्यू ऑफ 11 वर्सेस। One overview from the point of view of the 3 stages of devotional service we have seen. एक सूची जो कि हमने उत्तम भक्ति के वर्गीकरण के दृष्टिकोण से किया था, उसकी चर्चा हुई है। Now we will see further descriptions of these 11 verses. Before we begin the actual discussion of the book and start the verses, तो प्रथम श्लोक की चर्चा शुरू करने के पहले एक ओवरव्यू, एक सूची हमें होनी चाहिए। ऐसा कीजिए, वो उस चार्ट को थोड़ा सा उस तरफ कीजिए ताकि तीनों चार्ट एक साथ आ जाए यहां पर। वन कैन बी देयर, नो, इफ इट्स ऑल टुगेदर इन वन लाइन देन ऑल ऑफ यू कैन सी इट बेटर। So 3 and 4 is there, up to 4. 1 to 4 is there, and 4 is also there, and here is 5 to 8, and then 9 to 11 will be the third chart. अभी जो हम सोचे देने जा रहे हैं उपदेशामृत की, वो श्रील भक्त विनोद ठाकुर के टीकाओं के ऊपर आधारित है। So the overview that we are giving of the Upadeshamrita now is based on the teachings of Sri Bhakti Vinod Thakur. तो देखिए हमारे आचार्यों ने कितनी गहराई से इन ग्रंथों का अध्ययन किया था, और इतनी गहराई में अध्ययन करने के बाद विश्लेषण एनालिसिस कैसे किया उन्होंने अपनी शुद्ध और भक्तिमय बुद्धि के द्वारा। लेकिन सी हाउ डीपली आवर आचार्यज हैव स्टडीड दीज बुक्स एंड थॉट अबाउट इट, एनालाइज्ड इट विद देयर प्योर एंड डिवोटेड इंटेलिजेंस। सो देयरफॉर वी शुड ऑल्सो नॉट टेक दीज बुक्स लाइटली, वी शुड ऑल्सो सीरियसली स्टडी। तो हमें भी उतनी ही गंभीरता से, गहराई से इन ग्रंथों को जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने भक्तों में कनिष्ठ अधिकारी या अधिकारी नहीं, हाँ ठीक है अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये सब सुने हैं ना आपने? कितने भक्तों ने नहीं सुना है, हाथ ऊपर कीजिए, सभी ने सुना है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर बतलाने वाले हैं कि ये श्लोक किनका वर्णन करते हैं। वहां से शायद थोड़ा, शायद खिड़की बंद करने से हवा कम आएगी, अब ये पंखे के कारण हो रहा है शायद। आप पहला चार्ट पढ़ पा रहे हैं? यू आर एबल टू रीड द फर्स्ट चार्ट? अच्छा, अभी सबसे पहले यहां देखेंगे आप, सारे 11 श्लोक हैं, पहले श्लोक से लेकर 11 श्लोक तक यहां पर हैं। अब सबसे पहले आप नीचे देखिए, जो मेरे यहां लिखा हुआ है वो आप देखिए। तो पहले श्लोक में क्या का वर्णन है? आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी के लक्षणों का वर्णन है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे से चार चौथे श्लोक में श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि रूप गोस्वामी ने मध्यम अधिकारी गोस्वामी के बाह्य व्यवहार व भक्ति के नियमों की चर्चा की है। ओके, बाद में आप जब समय मिले अवश्य इनको आप लिख लीजिएगा और आपके नोट्स में रखिए। आपके पास जो किताब है वो आजीवन आपके साथ में रखिए। जैसे आप उपदेशामृत ग्रंथ को रखेंगे उसी तरह से आपके नोट्स भी साथ में रखिए। आपके नोट्स मेरे पास पे है, बुलाया हूं मैं, भूल गया। तो जब भी आप एक साल बाद, पांच साल बाद, 15 साल बाद जीवन के अंत में भी आप उपदेशामृत के बारे में और कुछ सोचना चाहते हैं तो वो आपके पास वो नोट्स रहेंगे। आप खोल के फिर से पढ़ सकते हैं, इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखा है पढ़िए, पांचवें से आठवें श्लोक में क्या बोल रहे हैं? हाँ, मध्यम अधिकारी गोस्वामी की दृष्टि एवं आंतरिक विकास, इन चार श्लोकों में ये चर्चा हुई है। और फिर नौवें और दसवें श्लोक में आराध्य स्थल एवं व्यक्तियों की श्रृंखला, और अंतिम जो 12वां श्लोक है पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ महिमा क्या है? राधा कुंड। राधा कुंड। सो दिस 11 वर्सेस हैव बीन एनालाइज्ड बाय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एंड ही सेज दैट द फर्स्ट वर्स डील्स विद द सेल्फ कंट्रोल्ड मध्यम अधिकारी। द फर्स्ट वर्स टॉक्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच अ डिवोटी, द सिम्टम्स। वर्सेस 2-4 टॉक अबाउट द एक्सटर्नल बिहेवियर एंड द डिवोशनल रेगुलेशंस और रूल्स फॉलोड बाय सच अ मध्यम अधिकारी। देन इन द 5th-8 वर्सेस श्री भक्तिविनोद ठाकुर सेज दैट रूप गोस्वामी इज डिस्कसिंग द विजन एंड द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ सच अ मध्यम अधिकारी गोस्वामी। इन द 9th-10th वर्सेस रूप गोस्वामी इज डिस्क्राइबिंग वर्शिपेबल प्लेसेस एंड पर्सनैलिटीज इन ऑर्डर। एंड फाइनली इन द लास्ट वर्स the greatest glory of the entire creation, that is Radha Kund, has been described by Srila Rupa Goswami. So this is a kind of an overview of the entire Upadeshamrit. So, abhi yahan tak koi prashn hai aapke? Jo bhi charcha abhi tak hui hai, इसके ऊपर को कोई प्रश्न है ये चैट के बारे में विशेष करके, और आगे भी हम देखेंगे, ये तो केवल बाह्य चीजें हैं, और विशेष करके हर एक श्लोक में क्या चर्चा हुई है उसका भी उल्लेख जो है भक्तिविनोद ठाकुर ने किया है, लेकिन उनकी चर्चा हम तब करेंगे जब हम उस श्लोक की चर्चा करेंगे, ठीक है। सो फॉर ईच वर्स ऑल्सो श्री रूप गोस्वामी श्री भक्तिविनोद ठाकुर हैज मेंशनड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्स, बट दिस विच इज रिटन इन ग्रीक, हरे रंग के रंग में लिखा हुआ है, वो हम तब चर्चा करेंगे जब इस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। So see this whole analysis of this Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhaktivinoda Thakur and all his wisdom has given us all these wonderful gems which are earlier handed down by Srila Rupa Goswami. जैसे सुख मुखाद अमृत संयुतम, जैसे श्रीमद भागवत पहले से ही मीठा है, परंतु सुखदेव गोस्वामी जब उसको कहते हैं तो और भी मीठा हो जाता है। जैसे एक तोता जब किसी फल को चख लेता है तो ऐसा कहते हैं कि वह फल और भी मीठा हो जाता है। तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो पहले से बहुत मधुर हैं, परंतु जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आचार्य उनको समझ के, उनके ऊपर विचार करके, विश्लेषण करके ऐसे टीका करते हैं, तो वो मूल ग्रंथ हमारे लिए और भी मधुर और रसमय हो जाता है, और हम सबके समझ के लिए वो अनुकूल बना देते हैं, ताकि चीजों को जब हम समझें हमारे बुद्धि में पचन इनका अच्छी तरह से हो जाए। जैसे हम भोजन लेते समय चबाते हैं, चबाकर चबाकर फिर पेट में डालते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत का जो पचन का काम है मुंह में ही हो जाता है, चबा लेते हैं। दूसरी बात, मुंह में जो थोड़े रसायन रहते हैं शरीर के, वो भी काम करते हैं। जब पेट में पहुंच जाता है तो थोड़ा बहुत काम हो चुका होता है, पचन के लिए आसान हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने ग्रंथों को भी इस प्रकार से प्रस्तुत किया है ताकि हमारे समझ के लिए बहुत अनुकूल हो, आसानी से हम समझ सकें इन चीजों को, ठीक है। तो ये है एक सूची उपदेशामृत की। तो प्रमुख की चर्चा शुरू करने के पहले हम थोड़ा कुछ श्री रूप गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करना चाहते हैं। उनके जीवनी तो बहुत लंबी है, उनके बारे में सुनने के लिए तो काफी समय चाहिए, इसलिए विस्तार में हम उनके जीवन की चर्चा नहीं करेंगे। केवल संक्षेप में यहाँ इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन से हैं। उपदेशामृत तो है ही, साथ साथ जो उनका बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है भक्ति रसामृत सिंधु। फिर उन्होंने विदग्ध माधव लिखा है, ललित माधव, उज्ज्वल मूलमणि, दान केलि कौमुदी, पद्यावली, स्तवमाला, राधा कृष्ण गण उपदेश दीपिका, लघु एवं बृहत दोनों, मथुरा महिमा, लघु भागवतामृत, ऐसे अनेक ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी ने लिखे हैं। उनके केवल जो महत्वपूर्ण है उनका उल्लेख यहाँ हमने किया है, और आमक में हम पढ़ने वाले हैं कि रूप गोस्वामी हम सबके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम सब रूपानुग कहलाते हैं क्योंकि रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में हम चलते हैं। हाँ जी, इसको घुमाएंगे। हाँ, तो रूप गोस्वामी के जीवन के जो तारीख है वो संक्षेप में इस प्रकार से है। 1489 उनका आविर्भाव हुआ, और प्रथम बार उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किया रामकेली में, 1615 में 1515 जबकि 1515 हाँ हाँ नहीं साधारण जो हमारी कैलेंडर है उसमें शताब्दी नहीं तो आयु 25 साल की थी उनके उस समय जब महाप्रभु का दर्शन हुआ होगा रामकेली में। आप इस लीला के बारे में जानते हैं ना, जब महाप्रभु वृंदावन में जाने के बहाने रामकेली में आए और बहुत सारे लोग उनके साथ में थे और उस समय सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने उनका दर्शन किया। तो रूप गोस्वामी उस समय बादशाह नवाब हुसैन शाह के दरबार में मंत्री थे, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, परंतु उनकी आयु कितनी थी उस समय, केवल 25। और उस समय भी वो विख्यात थे एक बड़े पंडित के रूप में, संस्कृत और वहां के भाषाएं जैसे बंगला वो तो जानते ही थे, साथ साथ फारसी अरबी ये सारी भाषाएं भी जानते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे और संसारिक कार्यों में भी व्यवस्थापन आदि के कार्यों में भी बहुत निपुण थे। इसलिए नवाब हुसैन शाह ने उनको मंत्री बना दिया इतनी कम उम्र में। और फिर वो चले गए प्रयाग अपने मंत्री पद को छोड़कर, अपने सारे धन समाज आदि को छोड़कर वैराग्य का जीवन स्वीकार किया। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के शरण को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा थी उनकी। रामकेले में जितना भी एक एक दिन वो बिताते उनके लिए भारी से भारी होता जा रहा था। कब मैं निकलूं यहां से, कब महाप्रभु के शरण में चले जाऊं, ऐसी तीव्र इच्छा उनके मन में थी। फिर अंततः अपने धन को उन्होंने बांट दिया, 25% वैष्णव और ब्राह्मणों को, 25% अपने रिश्तेदारों को, 50% आपातकालीन स्थिति के लिए उन्होंने रख लिए और वहां से वो निकल पड़े। और प्रयाग में त्रिवेणी संगम प्रयाग है, वहां पर महाप्रभु का दर्शन हुआ और उस समय वो केवल 27 साल के थे। ये 1516 में हुआ और यहां पर लगातार 10 दिन महाप्रभु ने दशाश्वमेध घाट पर उनको उपदेश दिए। स्वरूप गोस्वामी वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही फर्स्ट मेट महाप्रभु इन रामकेली, एंड देन एट द एज ऑफ 27 ही मेट महाप्रभु इन प्रयाग। ही हैड बीन हैंकरिंग टू गेट महाप्रभुज शेल्टर, ही सून लेफ्ट हिज ऑपुलेंस एंड हिज हाई पोजिशन इन बंगाल एंड सरेंडर टू महाप्रभु। महाप्रभु instructed him for 10 continuous days in Prayag, and based on these teachings, coupled with his further studies of the Shastras as instructed by Mahaprabhu and as empowered by him, he wrote many, many books which we discussed. So in 10 dinon mein Mahaprabhu se shiksha to unhone grahan kar hi li, saath saath Mahaprabhu ki kripa bhi prapt hui। महाप्रभु ने उनको पर कृपा की थी कि तुम सारे शास्त्रों के सार का निर्धारण कर पाओगे। आई ब्लेस यू, आई एम्पावर यू, आई गिव यू माई मर्सी दैट यू कैन एसर्टेन द एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। वैसे हम शास्त्रों को पढ़ने जाएं तो मन भ्रमित हो जाएगा। शास्त्र इतने सारे हैं कि व्यक्ति, साधारण व्यक्ति को निष्कर्ष नहीं कर पाएगा इन शास्त्रों से। तरह तरह के वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, तो सो मेनी डिफरेंट स्क्रिप्चर्स आर देयर एंड नॉर्मली अ पर्सन हु रीड्स इट कैन गेट टोटली कंफ्यूज्ड। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने न केवल 10 दिन शिक्षा दी सही सिद्धांतों के बारे में रूप गोस्वामी को प्रयाग में, साथ साथ उन्होंने रूप गोस्वामी के हृदय में वो प्रेरणा और वो कृपा और वो शक्ति प्रदान कर दी जिसके द्वारा रूप गोस्वामी सारे शास्त्रों के अध्ययन करने के बाद उनका निचोड़ और उनका सही निष्कर्ष निकाल पाए। निर्धारण कर पाए कि सत्य क्या है, सार क्या है। और फिर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिनका उल्लेख हम अभी अभी कर चुके हैं। फिर प्रयाग में जब शिक्षा समाप्त हुई, महात्मा गोपाल आगे बढ़े पुरी की ओर। रूप गोस्वामी भी आना चाहते थे उनके साथ में, लेकिन महाप्रभु ने कहा नहीं, आदेश का पालन करना ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूं तुम मेरे आदेश का पालन करो, न कि केवल मेरा संग प्राप्त करो। क्योंकि रूप गोस्वामी ने कहा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूं, जहां भी आप जाएं मैं आपके साथ में रहूंगा। ऐसे में महाप्रभु ने महत्वपूर्ण उपदेश उनको दिया था कि मेरे साथ में रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे आदेश का पालन करना। मैं तुम्हें आदेश कर रहा हूं तुम वृंदावन जाओ, तो जाओ तुम वृंदावन, और मैंने जो कहा है वृंदावन में करने के लिए वो वहां पे करो। और फिर अगले साल तुम पुणे आना और मुझसे वहां पर मिलना। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज महाप्रभु गेव टू रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वॉन्टेड हिज फिजिकल एसोसिएशन, बट महाप्रभु सेड नो, फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू गो बैक टू वृंदावन। दिस इज वेयर इट इज योर गुरु दत्त देश, योर प्रभु दत्त देश। वृंदावन तुम्हारे लिए प्रभु दत्त और गुरु दत्त देश है। चैतन्य महाप्रभु गुरु भी थे, भगवान भी थे दोनों। रूप गोस्वामी के गुरु भी है, साथ साथ भगवान भी हैं स्वयं। तो जब गुरु कोई स्थान देता है शिष्य को कि तुम वहां जाकर रहो, तो वो है गुरु दत्त देश कहते हैं, गुरु ने प्रदान किया हुआ स्थान। और जब भगवान स्वयं देते हैं तो प्रभु दत्त देश। तो वृंदावन रूप गोस्वामी के लिए गुरु दत्त देश भी था, प्रभु दत्त देश भी था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान भी हैं और उनके गुरु भी थे। तो रूप गोस्वामी यहां पर आए और फिर 56 साल की आयु में एट द एज ऑफ 56 इन वृंदावन गोविंद देव का प्राकट्य यहां पर हुआ रूप गोस्वामी के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये, 46 की आयु में, 1535 में। और भक्त साम्रत सिंधु की रचना उन्होंने की 56 की आयु में, जब मैंने एज वॉज 56। और तिरुभाव उनका हुआ 1565 में, सो ही डिसअपीयर्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल प्लेन हियर इन वृंदावन एट एज 75 इन 1565। तो रूप गोस्वामी के जीवनी की संक्षिप्त रूप में ये तारीख ऐसे हैं जिसे हम जान सकते हैं किन किन का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद में क्या है देखिए, एक मिनट, इस हल्का सा हमें दिखाइए। हाँ ठीक है, कोई बात, रहने दीजिए। ठीक है, तो कल से हम उपदेश अंगद के आमुख या प्रीफेस की चर्चा कर शुरू करेंगे। आज केवल एक सूची या एक भूमिका, एक इंट्रोडक्शन इस ग्रंथ के लिए था। ठीक है, तो टुडे वाज लाइक एन ओवरव्यू एंड एन इंट्रोडक्शन टू उपदेशामृत। टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द टेक्स्ट। वी विल स्टार्ट विद प्रीफेस एंड देन गो ऑन टू द फर्स्ट वर्स एंड डील विद द वर्स एंड परपोर्ट्स एंड सो ऑन। और जब हम चर्चा करेंगे तो आपसे निवेदन है कि ये तीन श्लोक जो हैं ये हमेशा एक साथ में कहीं चिपक के रखने चाहिए। चाहे यहाँ पे देखिए कहाँ कोई योग स्थान होगा, देखिए जहां पर सभी भक्त देख सकें। ठीक है, क्योंकि सारे उपदेशामृत की चर्चा के समय बार बार हमें इस इन चार्ज को रेफर करना होगा। ठीक है, पहले श्लोक की चर्चा करेंगे तो फिर से देखेंगे तीसरे चौथे आठवें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी समय समाप्त होने हो रहा है, आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। हाँ हाँ, कोई गलत में गलती है क्या, कहाँ पे? हाँ हाँ वैसे देखिए उस साल में जन्मदिन के ऊपर है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। जन्मदिन आगे पीछे होने से हो सकता है कि जन्म के पहले चले गए 1515 में, ये मुलाकात हो जन्मदिन के पहले 2600 जन्मदिन के पहले हाँ, और प्रयाग में पहुंचने के बाद उसी साल में जन्मदिन 2700 हो गया था। तो वैसे देखा जाए तो डेढ़ साल बीत गए होंगे बीच में, समझ रहे ना। ये ग्रंथ हाँ सबके लिए है ये ग्रंथ।
एक कनिष्ठ अधिकारी जो भक्त है उसका मतलब यहाँ पर पहले श्लोक से उसकी मतलब कोई स्थान से मतलब मध्यम अधिकारी से बताया जा रहा है यहाँ पर।
आपका प्रश्न ये है कि प्रवचन में ऐसे कहा गया था कि ये सभी के लिए है, 900 के भक्तों से लेकर सबसे ऊंचे भक्तों के लिए, लेकिन पहले ही श्लोक में वर्णन शुरू होता है आत्मसंयमी मध्यम अधिकारी से, कनिष्ठ भक्त की बात ही नहीं है, तो कनिष्ठों के लिए कैसे हो सकता है। बात यह है जब हम कह रहे हैं कि ये सभी के लिए है, इसका मतलब ये नहीं है कि कनिष्ठ का वर्णन इन श्लोकों में है। वर्णन शुरू होता है मध्यम अधिकारी के लक्षणों से, परंतु कनिष्ठ भक्तों को भी सुनना चाहिए इसके बारे में, उनको समझना चाहिए, ये बात है। जब हम कह रहे हैं कि ये सबके लिए ये ग्रंथ है, इसका मतलब है कि सबको सुनने के लिए योग्य है, चाहे वो प्रेम भक्ति के स्तर में हो, फिर भी उनको सुनना चाहिए, और जो शुरुआत कर रहे हैं भक्ति की उनको भी सुनना चाहिए, ठीक है, ये कहने का मतलब है। और कोई प्रश्न? हाँ एक मिनट, हरे कृष्णा।
तो इसका मतलब है इसमें कनिष्ठ अधिकारी किस तरह रहना चाहिए, उनके जैसे एक्टिविटीज के बारे में उपदेशामृत में बताया नहीं गया।
नहीं, कनिष्ठ अधिकारी की जीवनी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं बताया गया, परंतु कनिष्ठ अधिकारी को कैसे बनना चाहिए यह बताया गया है, किस प्रकार से अपने वैगों का दमन करना चाहिए, आगे चल के हम देखेंगे पहले श्लोक की चर्चा में। पहले श्लोक में रूप गोस्वामी बताएंगे शर्वेगों का दमन कैसे करना चाहिए, जो व्यक्ति कर सकता है वो पृथ्वी भर में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। श्लोक में रूप गोस्वामी इतना ही कहते हैं, परंतु तात्पर्य में श्री भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर और श्री प्रभुपाद भी विस्तार में वर्णन करते हैं कि ये कैसे किया जाए। जिस अवस्था का वर्णन रूप गोस्वामी श्लोक में कर रहे हैं, उस अवस्था को एक साधारण नौसुखिया भक्त भी कैसे प्राप्त कर सकता है, वो तात्पर्य में बताया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। सो ऑनली इन द वर्सेस ऑफ लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन देर इज नो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज ऑफ अ कनिष्ठ अधिकारी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल्ड मध्यम अधिकारी। Nevertheless, it is subject matter for
को अन्य के प्रति बर्ताव कैसे करना है। अवसर मध्यम अधिकारी डीवी अदर जो कमिश्नर हुआ मध्यम मध्यम उसका अवसर दिए सम ब्रीफ डिस्कशन बट द पॉइंट इज दैट प्रभुपाद एंड शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर हैव एक्सप्लेन्ड इन देयर पर्पस एंड कमेंट्री हाउ द स्टेज ऑफ होम सेल्फ कंट्रोल कैन बी अचीव्ड Rupa Goswami in the words has already mentioned that this is the qualification for somebody who is six of his disciples all over the world. That he has controlled his six urges. So how to control those six urges? That is useful for any ordinary devotee? So that has been explained in the purpose. प्रश्न ये है कि राधानुगा भक्ति और भाव भक्ति दोनों का वर्णन एक जैसे लगता है तो दोनों में अंतर क्या है अंतर काफी है राधानुगा ये किस स्तर में आता है साधना साधन साधन अर्थात अभ्यास और भाव भक्ति से अभ्यास में आता है तो जो राधानुग भक्ति है हालांकि वैदिक भक्ति के हिसाब से काफी आगे बढ़ा हुआ है और उसमें रुचि भी थोड़ी बहुत जागृत हो चुकी होती है काफी मात्रा में फिर भी अभी तक वो अभ्यास के स्तर नहीं है और प्रत्यक्ष में परिपूर्णता के स्तर से प्राथमिकी में अभी तक ठीक है लेकिन भाव भक्ति के अवस्था में जो वो स्वाभाविक रुचि है वो आसक्ति है वो आकर्षण है भगवान के प्रति वो और ज्यादा इसका तीव्र हो चुका लेकिन डिग्री मात्रा में फर्क है और भाव भक्ति एक अभ्यास की अवस्था नहीं है साधन की अवस्था नहीं है ये प्राय शास्त्र की अवस्था है ऑलमोस्ट रिस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन वेरी क्लोज राघवनगर भक्ति भी हमारे दृष्टि से बहुत ऊंचा है वास्तव में है वो भी बहुत ईशा भाव भक्ति उससे भी बहुत प्रेमा भक्ति और ठीक है
मध्यम अधिकारी का वर्णन गुरुजी प्रभुपाद ने आगे तात्पर्य बताया कि वन शुड नॉट बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर अनलेस यू हैव अटेन्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ उत्तम अधिकारी यहाँ पे स्पिरिचुअल मास्टर बनने
एक्चुअली यहाँ पे उत्तम और मध्यम प्रश्न ये है कि यहाँ पे मध्यम अधिकारी का वर्णन कैसे है जबकि प्रभुपाद जी का कहते हैं कि हमें धीरे धीरे करना चाहिए तो उसका शिक्षण उत्तम अधिकारी नहीं करना तो वास्तव में उत्तम और मध्यम और कनिष्ठ जो भी विश्लेषण के साथ विशेषण है उसको अलग अलग दृष्टि में देखना चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से जो शिक्षा दी है उसमें दो प्रकार के विश्लेषण किया है एक है श्रद्धा के अनुसार जो शास्त्र में श्रद्धा है उसके अनुसार जिसका उल्लेख भक्ति रसामृत में वो गुरु पर पाठ कनिष्ठ मध्यम और उत्तम और ये तीनों ही वैदिक भक्ति के अंतर्गत आते हैं ये जो मध्यम और उत्तम और कनिष्ठ हैं तीनों ही वैदिक भक्ति में आते हैं क्योंकि वो तो उनके वैदिक भक्ति की चर्चा करते हैं भक्ति रसामृत में उस समय वो बताते हैं कि तीन प्रकार के अधिकारी व्यक्ति हैं फिर महाप्रभु दूसरे प्रकार के वर्गीकरण करते हैं और वो कहते हैं कि प्रेम कितना विकसित हुआ है, मतलब प्रेम कृष्ण प्रेम व्यक्ति के अंदर, उस दृष्टिकोण से जो विश्लेषण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो श्रीमद भागवत के द्वारा उत्पन्न होती है। वहां के कनिष्ठ मध्यम उत्पन्न करवाना है, ठीक है, तो वो अलग है। हालांकि वो भी कनिष्ठ मध्यम उत्तर है, ये भी कनिष्ठ मध्यम उत्तर है, लेकिन दो अलग दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण किया गया है। इसलिए इसमें कोई ऐसे भेद या कोई कॉन्ट्रडिक्शन जरूर रहा है। तो अभी मैं समाप्त करना चाहिए, आपके प्रकार से चर्चा हो गया। और भी प्रश्न आपके हैं तो उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। जो फल कब लेकर मिलेंगे, और उसके बाद ही आशा करते हैं कि चर्चा जो हफ्तों तक चलेगी, तो अब तक आप इतने कहें कर सकते हैं। श्री नारायण रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेश अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गोपनाथ की जय।
कृपया मुझे नाम दे दीजिए, और अंग्रेजी या हिंदी चाहिए। जो राधा है वैदिक भक्ति के लिए ऊपर